لوگوں کو اگر باتیں کرنے پیچھے اٹھا نہیں بیٹھا اٹھا یہاں سے آگے نہیں دیکھنا آگے ہاں جی
بابا جو دادا رام کو بلائے تھے
ہاں جی
ان کے نام میں رام بھی ہے موہن بھی ہے دونوں ہیں اور ان کی جو یوگت تھی وہ اما تھی اما نام تھا جو پاروتی کا سوتر ہے وہ جو انہوں نے سماج ستھاپت کیا وہ برہما سماج تھا برہم سماج اور سر سے آتے تک سنگ رسیل رہے وہ جنگ رسیل لائف رہے ان پوری جب وہ رام والی آتما پاٹ کے سکتے
یہ کوئی ٹرک ہوا نام تو دنیا میں بہتوں کو دے دیتے ہیں نام کچھ دے دیتے ہیں کام کچھ کرتے ہیں اور
سوریہ دیوتا اور
ایک منٹ ہاں
بوڑھی بوڑھی ماتا ہندو کلاس کو کرنے آتی ہے لیکن وہ
سنگھن میں نہیں آتے ہیں ڈیلی کلاس کرتے ہیں
تو نیچے چیز وغیرہ لے کے آنی چاہیے ہاں وہ جو چیزیں دیتے ہیں نا ماما پاپا چٹھی بھی سیوا بھی سنگھن نہیں کرتی وہ کبھی بھی
کلاس میں تو روز جاتی ہے تو ٹھیک ہے جو چٹھی لاتا ہے یا سیوا لاتا ہے وہ اس میں اپنا سائن کر دے لکھ دے دوارا کیا آپ تو پتا پڑے گا کہ غلط آدمی کا پیسہ تو نہیں آ گیا ہاں جی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں لیکن لانے والے کا بھی نام لانے والے کو اپنا نام لکھ دینا ہے
سوریہ دیوتا اور چندر دیوتا تب کہیں گے سوریہ باپ ہے اور چندر ماما چندر ماں کا چندر ماما تھا
ماما جس نے کہا ارے کتاب میں کہیں بیسک نالج میں پڑھ لیا اسکول میں چندا ماما دور کے تو بس ماما ہو گیا ارے شبد میں تو چندر ماں ہے چندر کیا ہے ہماری ماں ہے اور
مدھوبن میں بتایا کہ اوم شانتی نیو اوم نمہ شیوائے بولے گا
مدھوبن میں بتایا ہے اچھا
ہمارے یہاں سینٹر
بیٹھے ہاں
روپا خود اوم شانتی بولتے
نمن کس کو کرنا ہے نمن کرنا مانے کیا نمر کرنا مانا بدھی جھکانا بھکتی مارگ میں تو صرف نمن کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے مڑیا جھکا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو نمن کرتے ہیں اس کی ہر بات مانے ہی اصلی نمن کرنا ہے بدھی سے جھک جانا مکھ سے بکا لگانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے وہ بکا بھکتی مارگ میں لگایا جاتا ہے بولتے رہتے اوم نمو شیوائے اوم نمو شیوائے اوم نمو شیوائے لیکن ابھی سنگم میں 70 سال ہو گئے क्या शिव की सारी बातों को सर झुका के मानते हैं कि अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं? चलते हैं या नहीं? तो न ओम नमो शिवाय का हुआ, जो कहें सो करें, तो हुआ सच्चा सच्चा ओम नमो शिवाय। बाकी मना तो रही है, ज्ञान में नहीं है तो कम से कम भक्ति में भक्ति ही करे। भक्ति में वाचा ज्यादा चलती है, ज्ञान में आने वाले बहुत से ऐसे हैं, बहुत सी बूढ़ी माता है, शिव बाबा बिंदी रूप में, आत्मा बिंदी रूप में याद तो नहीं आती है, लेकिन मुख से बोलते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। इसको ज्ञान कहेंगे या भक्ति कहेंगे? तो भक्ति। और आज
ये दुख सुख का खेल बनाया बाबा
बनाया बना बनाया नहीं है
आपने बनाया
बनाया कब बनाया? अगर तुम कहते हो बनाया तो बताओ कब बनाया, कब बनाया बताओ? अगर तुम कह दो तो हम मान लें, तुम्हारे कहने से मान लेंगे सब लोग। बना बनाया ऐसे है कि जैसा पहले चला था वैसा ही अब भी चले, और जैसा अब चले वैसा अगले कल्प में भी चले।
कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा,
ये तो भक्ति मार्ग में भी बोल दिया कि राम का अवतार हर त्रेता युग में होता है, तो हूबहू रिपीटेशन हो गई। जब जब चार युगों में से दूसरा युग त्रेता युग आएगा, राम का जन्म होता है त्रेता में।
ये
दुख सुख बनाया बनाया नहीं है, आत्मा बनाई जाती है कि बनी बनाई है? आत्मा बनाई
जाती है,
ये कहाँ से ज्ञान लेके आ गए? अरे न भगवान बनाया जाता है न आत्माएं बनाई जाती है, सत्य के ये पांच तत्व बनाए जाते हैं, नहीं ये ड्रामा बनाया जाता है, ये बना बनाया है, जैसा है वैसा ही है।
सुख बनाने आए ना,
सुख और दुख तुम अपने कर्मों से बनाते, हम अपने कर्मों से बनाते।
ये तो ज्ञान दिया आपने के हिसाब से,
तो फिर ज्ञान ही मानो ना।
ज्ञान हिसाब देखते
खत्म ही लो, खत्म तो तुमने जब किए थे 63 जन्म पाप, तो तुम खत्म किए थे, तुमने कभी तोबा की क्या? हम नहीं करेंगे,
ये ज्ञान खत्म हो जी पाप ना हो,
इसका
पाप नहीं होने का तो ज्ञान खत्म ना करो।
पाप की
अभी कहो ना कोई तो
अभी पाप की आती नहीं हुई है, जब आती होगी बोलती बंद हो जाएगी।
आप क्यों दुखी सुखी हो रहे हैं? आप भी
कहा दुखी सुखी हो रहे हैं? हमें तो कोई दुख नहीं है, भगवान के बच्चे बने, दुखी होने के लिए बने, काहे का दुख है, काहे का दुख है? बेइज्जती, अरे बेइज्जती हमारी चिपक जाती है क्या? गलानी हमारी चिपकी हुई है क्या? कोई गाली देता है तो चिपक जाती है क्या? तुम्हारे चिपते हैं क्योंकि तुम मानते हो बनी बनाई है, बनी बनाई नहीं है, बनाई है, तो फिर दुख सुख भी बनाया। भगवान तुम्हारे लिए दुख और सुख बनाने आता है?
हाँ,
तुम खुद बनते हो।
दूसरा डरला बच्चा है आपका, राजरा थी, दोनों क्यों फंसा गए?
असाता कोई किसी को नहीं है,
घेर घोट कर जा रहे तब इन्हें बच्चे बका सिखा कर अपने शत्रु में ले जाए, मनो ले जाए, और वह रावण के पिछले ओडिया लगा रहे तो यहाँ हमने ये बच्चे अजीब दुख दिए।
लगा थोड़ी रहे, हमने लगाया उनको पिछले ओडिया
लगा, और कौन बना कर
लाए? कोई ने नहीं बनाया, हम अपने कर्मों से अपने पीछे माया रावण को लगाते।
और हम तो जो ज्ञान खत्म ना हो कोई ना हो,
कर्म खत्म ना हो,
जो ज्ञान जो खत्म ना करो आप, अजीब ज्ञान खत्म ना हो,
ज्ञान खत्म नहीं हो, अरे दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। अभी जब तक ये दुनिया है तब तक ये ज्ञान भी है, न ज्ञान रहेगा न दुनिया रहेगी।
बिस्कर लगे हो जाने सिंगरिया की मर
है तो जाने न के
रहे आपको कयाम आपने ये सुख मनाया है
फिर वही बात के दिन ही दिन रखे के रात ही रात रखे ऐसे होता नहीं। दिन भी होगा तो रात भी होगी ऊंचा उठना होगा तो नीचे गिरना भी होगा। ये तो दुनिया प्रवृत्ति से बनी हुई है ऊंचे है तो नीचे भी है
इतने आत्मा बना के घेर
फिर आत्मा बना के
घेर धरती माता की तो माने और हमने कर्म करे ये ऊंट करे जिंदर कटर लग रहे इन्होंने भी कर्म करे
कर्म करे ना
करे उन्होंने
हाँ तो जो कर्म करे वो करे कराए थे या करे करे ना हाँ तो जैसे करे वैसे भरे है? हाँ जानवर भी कर्म करते कोई जानवर देखो कारों में घूमते हैं खीर पूड़ी खाते
हैं। अरे राजस्थान से जो ढोगा कार्टन लग रहे
हाँ
गाँव और जो बछड़े आदमी जो कुछ भी हाथ लग जा सब कार्टन लग रहे
हाँ तो ठीक है
ठीक है।
हाँ मुसलमानों का राज्य चलेगा ना राक्षसों का भी राज्य चलना चाहिए ना
नहीं
क्यों नहीं चलना चाहिए क्यों जब उनका टाइम आएगा तो उनका राज्य चलेगा।
आपके बच्चों को दुख निकल है उनके राज्य के
बाप के बच्चे वो जो बाप की बात माने तुम तो ना बाप को मानो ना ब्रह्मा को मानो ना ब्रह्मा की मुक्ति नहीं बाप को मानो तुम तो अपनी बात मानते हो
मानना पड़ेगा ना
क्या मानना पड़ेगा तुमको मानना पड़ेगा तुमको जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि दुनिया जो है बनी बनाई है बनाई नहीं जाती
बनाएगा
वही आपने बनाई एक आदमी कुछ बोलता रहे और हुजूम के हुजूम कहे कि ये क्या बोलता है झूठी बात है गड़बड़ सड़बड़ बोलता है तो उसे पागल कहेंगे
ये आके मेरा बच्चा इतना जवान हो जाए फिर अगले दिन बीमार हो जाए मर जाए काट दे कोई
अच्छा
कोई चाहके
अच्छा बुरा कर्म किया होगा जी ये भी होगा
बुरा कर्म तो ये पुण्य हो जाओ तो मेरी बात मान लो
तुम्हारी बात क्यों माने भगवान हो गया
भगवान का ना हो गया पर ये जो ज्ञान दिया आपने आरोप क्यों
हमने ज्ञान दिया हमने तो लिया
दिया ना लग रही आपने
हमने दिया नहीं लिया ले करके देना है ब्राह्मणों का काम है लेना और देना दोनों काम है
सुख मान ही रहे मैं कर ले तो कर करो तुम तो हसो माता जी बिस्कर लगे हो जाने रावण ने कन्या पर सभी खरीद कर कर घर वहां से दे दी कर रखी मारी उनका नहीं पता तो कर
रखा
त्रिमूर्ति त्रिदेव ने अनसुया को ध्रुव वर्धन दुर्वासा उनका पुत्र दिया था दुर्वासा
हाँ।
उसका मतलब क्या है
मूर्ति ने
हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर ने जिन्होंने आशीर्वाद देके अनसुया को पुत्र दिया था दुर्वासा
हाँ।
दुर्वासा उसका मतलब क्या है
उसका मतलब यही है कि एक ऐसा भी पाठधारी होना चाहिए कि जो देखते ही उसको दंड दे दे गलत कर्म करते हुए वो गलत कर्म देख नहीं सकता सुन नहीं सकता पावर है इतनी और उसको कोई झूठा और गलत साबित भी नहीं कर सकता बाकी बात के पाठधारी है दुनिया
बाबा
हाँ।
पहली एक वाणी में बोला है कि साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा
हाँ?
आज आ जाता तो बच्चे यहाँ सुबह आ देते
ठीक है क्योंकि वो पार्ट जो है वो ब्रह्मा जैसा लचीला पार्ट नहीं है कि बच्चे कुछ भी करते रहे आओ बच्चे गेंदो बैठो प्यार करो टोली खाओ वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला पार्ट, वो पार्ट सख्त पार्ट है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को बड़े आराम से बैठे हुए दिखाया गया, वो उनकी करनी दिखाई है बैठक में, और शंकर को तंग करके बैठा हुआ, सर पटक पटक के मर जाओ, वो अपनी बात को बदलने वाला नहीं है। इसलिए बोला कि अगर अभी आ जाता तो तुम बच्चे आंसू बहा देते, क्योंकि सारे सारे बच्चे बेसिक के थे, बच्चा बुद्धि थे, एक भी समझदार नहीं था उस समय। इतनी भी समझ नहीं थी कि हम बिंदु आत्मा को कैसे याद करें, प्रैक्टिस भी नहीं की। अभी भी बहुतों की समस्या है बेसिक में, बिंदु को कैसे याद करें। बालिग हैं तो समझदार, जो बालिग हैं वो नहीं नोएंगे इतनी जल्दी। ब्रह्मा जैसे बच्चा बुद्धि जो बच्चे हैं वो तो जरूर रोएंगे। ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, रोना शुरू कर दिया। तो जब ब्रह्मा बाबा ही रोना शुरू कर दिया तो विनाश के विभीषिका में पार्ट बजाने वाला, उस विनाश के रास्ते को, विनाश के माहौल को वो बच्चे कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए बोला अभी आ जाता तो आंसू बहा देते, हेल्पलेस हो जाते। अभी तो हेल्पलेस नहीं हो गए, अभी तो रावण की तरह बनकर के खड़े हो गए हिरण्यकश्यप। अभी ही भगवान है, कोई साकार भगवान दुनिया में नहीं होता है, ऐसे बनकर के बैठ गए। अगर भगवान है तो हमारा मुकाबला करके दिखाए, हमको नीचे दिखाए। तन की ताकत में, धन की ताकत में, मनोबल की ताकत में हमको नीचा बना के दिखाए, हमसे युद्ध करे, तब मानेंगे भगवान। तो तब में और अब में तो बहुत फर्क हो गया। तब थोड़ी इतनी हिम्मत थी, अब इतनी हिम्मत आ गई है।
बाबा
हाँ,
बिंदी ना दिखे साकर में,
है
साकर में याद करे तो बिंदी ना दिखे,
बिंदी ना दिखे
मतलब याद करे तो बिंदी हो, रुकुटे में देख कहते हैं ना बिंदी शेर को बिंदी के रूप में देखना।
हाँ,
तो बिंदी ना दिखे, लेकिन हम सोच रियलाइज करें कि हम बात से सीधा बात कर रहे हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं।
जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। बाबा ने तो कहा साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा था। तुम भले साकार बाबा को याद करो, जैसे बाबा ने भी गुरु में बोल दिया, अच्छा छोटा रूप याद नहीं आता है, बड़े रूप को ही याद करो। तो बड़ा रूप है साकार और छोटा रूप है ज्योतिबिंदु आत्मा, जैसी अवस्था है वैसा ही याद करो। प्रैक्टिस करते करते फिर महीन रूप में भी याद
आ। और बाबा ने बोला साकार में निराकार को याद करो,
ठीक है,
तो साकार को देखते हुए तो बिंदी रूप में कंसंट्रेट करना।
बिंदी अकेली कुछ नहीं कर सकती, बिंदी को साकार शरीर चाहिए और जैसी स्टेज वाली बिंदी है, जितने महीन स्टेज वाली बिंदी है, जितनी ऊंचाई पर स्थित होने वाली बिंदी है, उसको उतना ही ऊंचा साकार पाटदार चाहिए। 35 करोड़ देवताओं में से एक एक में आकर के सोल प्रवेश करती है, इसलिए ये नियम बनाया है ऊंचे ऊंचे बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। तो वो ऊंचते ऊंच साकार कौन है ये पहचान करना जरूरी है, और वो पहचान बाप ही आकर के बताते कि मेरा प्रैक्टिकल साकार स्वरूप कौन है। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स तो समझ लेते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान। लेकिन मुरलियों में तो 20 जगह आया है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण की तो पूजा बच्चे के रूप में होती है, बच्चा क्या राज को समझेगा, राज की बातों को सगीर बुद्धि समझेगा या नाबालिग बुद्धि समझेगा।
बाबा विजय माला में दिखाया कि शिव ब्रह्मा और सरस्वती, और रुद्रमाला में दिखाया है परमात्मा प्रजापिता और जगदम्बा, इसका अलग अलग अर्थ क्या हुआ?
क्या रुद्रमाला में क्या
दिखाया? झाड़ के चित्र में, झाड़ के चित्र में दिखाया परमात्मा प्रजापिता और जगदम्बा, ये रुद्रमाला का मड़के है।
और झाड़ के चित्र में दो माताएं मालाएं अलग अलग है,
नहीं दिखाए मैं अलग अलग है ना, उसमें दिखाते हैं कि शिव ब्रह्मा और सरस्वती ये विजय माला की मड़के हैं, परमात्मा प्रजापिता जगदम्बा ये रुद्रमाला के मड़के।
हाँ दो मालाएं अलग अलग नहीं दिखाई है झाड़ में, एक ही माला दिखाई है।
माला तो एक ही दिखाई है मगर अर्थ अलग अलग बताए।
जब दो चीज होंगी तो अर्थ अलग अलग बताएंगे, वहां तो है ही सिर्फ विजय माला। विजय माला में रुद्रमाला के मड़के बाद में ऐड किए जाते तब एक माला बनती है।
पूरा नाम है बाबा परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती।
हाँ
पूरा नाम
है, दोनों मिलकर के बनते हैं ना।
हाँ
बाबा एक वाणी में बोला है जी कि 79 की वाणी है जी, उसमें बोला जी 42-43 वर्ष साकार के और 10 वर्ष एक्ट के,
दस वर्ष आकार के अव्यक्त के और 42-43 वर्ष साकार के, तो 50 से भी ऊपर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यक्त हुआ 69 में 18 जनवरी में, और ये वाणी है 78 की, हाँ 78-79 की, तो ये 10 साल हो गए अव्यक्त के पार्ट बजाने के। 69 से 78-79 तक, हाँ ये 10 साल हुए साकार के, वो अव्यक्त के आकारी पार्ट के, और 42-43 वर्ष जो हो गए वो साकार के हो गए। 42-43 वर्ष इसलिए कहा कि 68 में तो ब्रह्मा बाबा ने 33 साल के बाद शरीर छोड़ा, तो 33 साल वो, और 68 के बाद फिर दूसरा पार्ट जो है वो साकार में आ जाता है ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद। प्रत्यक्ष नहीं होता है लेकिन साकार होता जरूर है, जैसे संसार उसी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा आ जाता है, तो 69 से ही दूसरी आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, शूद्रों की दुनिया में नहीं, लेकिन ब्राह्मणों का धंधा ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में अध्यक्षता के रूप में आ जाती है।
76 तक माना जाएगा
बाबा, और 76 तक नहीं 78 तक, हाँ 78 तक वो पाठ बजाती है साकार में तो है ना, तो 33 और 10 फिर जोड़ दो तो 42-43 वर्ष हो गए साकार में। भले दो साकार हुए, एक ब्रह्मा के रूप में और दूसरा 76 में शंकर के रूप में जो प्रत्यक्ष हुआ वो 78 तक चालू है, इसलिए 42-43 वर्ष बोले साकार के। और 10 वर्ष आकार के, परंतु ऐसे महावाक्यों को बेसिक वाले उठाते ही नहीं है और समझाते भी नहीं।
हमारे झाड़ में जो माला दिख रही है ये विजय माला है कि रुद्र माला है?
विजय माला।
विजय माला तो
रुद्र माला को तो जानते ही नहीं थे। जब बेसिक नॉलेज चल रही थी तो रुद्रमाला का उन्हें पता ही नहीं था रुद्रमाला क्या होती है, क्योंकि वो बेसिक वाले तो शंकर के पार्ट को ही साकार में नहीं मानते।
परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, तो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है?
दादा लेखराज का ही टाइटल प्रजापिता का दे दिया गया, इसलिए आश्रम का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। वो टाइटल धारी प्रजापिता था, एक्चुअल नहीं था।
होली में पॉइंट आया था कि पहले राम का जन्म मनाया जाता है फिर कृष्ण का, बट पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है और उसके बाद रामनवमी आती है ना?
त्रेता में राम फेलियर पहले है या बाद में? फेलियर को कहाँ रखना चाहिए? बाद में रखना चाहिए। तो त्रेता में राम को रखा गया। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, नारायण 16 कला संपूर्ण, कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सत्युग 16 कला संपूर्ण, उनको आज में रखा गया। ऐसे तो कृष्ण जन्माष्टमी होने से पहले भी नौ दुर्गा मनाई जाती है साल में दो बार, और रामनवमी भी होती है। पहले शिव, बाद में राम, बाद में कृष्ण, बाद में फिर होता है रावण।
और जो पवित्र बुद्धि से पहले ज्ञान लेती है, अगर
एक मिनट हाँ बोलो।
लक्ष्मी नारायण की राज्य में स्थूल महल तो होते नहीं, तो फिर जो राजा प्रजा दासदासी वो किस प्रकार के कैटेगराइज होते हैं, कब से शुरू होता है स्थूल?
वो राम की राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है या नहीं? राम की राजगद्दी का एक चित्र दिखाया जाता है जिसमें राम सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मण छत्र छाया लिए खड़े हैं और शत्रुघ्न पांव पखार रहे हैं। और भरत पंखा झला रहे हैं। वो पूरा परिवार दिखाया है या उनको दास दासी भी कहेंगे?
परिवार
है तो परिवार। परिवार में छोटा बड़ा तो होता ही है। जो छोटा बन के जन्म लिया उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध, छोटे बच्चे को सबके पांव छूने पड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम कोई अलग है। उसकी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है हमें सबकी सेवा करना है, इनके भी पांव दबाना है, उनके भी पांव दबाना है, बड़े भाई के भी पांव दबाना है, बड़ा भाई बाप समान है। तो ये भावना पक्की हो जाती है यहाँ संगम में। अरे भाई ये सारी संगम युग की बातें हैं जो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाई गई। सब युग देता है, तुम्हारे पास तो कोई हिस्ट्री नहीं है। कोई हिस्ट्री है? कोई हिस्ट्री नहीं, ये तो बाबा ने हमको बताया। शास्त्रकारों ने जो सत्युग त्रेता की बातें लिख दी है वो संगम युग की बातें हैं। सारा नजारा संगम युग का है। भक्ति मार्ग में जितने भी टंट घंट किए जाते हैं वो सारे संगम युग के किए हुए।
बाबा वहाँ पर फिर सब समान हो जाएंगे,
बिल्कुल हो जाएंगे, वहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई है, लेकिन छोटे बड़े गिने जाते।
तो बाबा जो पद की बात आती थी वहाँ जाके पद का मनाया, वो तो वहीं का मन
था। अभी तो बताया परिवार एक होता है, उसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, जो छोटा होता है उसको बड़ों का रिगार्ड करना पड़े कि नहीं करना पड़े। बाकी दास दासी समझते नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म किया जिससे छोटा भाई बनना पड़े। ऐसे तो सारा राज परिवार, सारा राज्य राजा की प्रजा है, राजा के बच्चे बच्चियां हैं, और बच्चे बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए ना। लेकिन राज्य में जो भी प्रजावर्ग के भांति हैं, वो सब राजा को बड़े रिगार्ड से देखते हैं। ये रिगार्ड का फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम में पड़ता है। तो संगम में राम के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने ऐसा कुछ किया होगा विरोध का काम, जो उनको छोटा भाई बनना पड़ता है। बाबा ने कहा जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा, जो ज्ञान में छोटा सो छोटा, जिसके अंदर ज्ञान कम है वो ज्ञान की धारणा भी कम करेगा, कर्म भी ऐसे ही करेगा। ज्ञान बहुत है, गहराई तक है, तो धारणा भी करेगा और दूसरों को भी कराएगा। तो राम वाली आत्मा ने जो ज्ञान को समझा, उस समझने के आधार पर राम राज्य स्थापन कर दिया। और दूसरे धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन्होंने आज से अंत तक विरोध किया, बाधाएं डाली, विघ्न पैदा किए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा धारण किया अधूरा, इसलिए उनको पंखा जलते हुए दिखाया गया है। बाकी वहां पंखा जलने की बात ही नहीं है, ये चित्र कहां की यादगार बना हुआ है? संगम की यादगार। जो यहाँ सेवा लेती है जबरदस्ती, उनको वहां जन्म जन्मांतर सेवा देनी पड़ेगी। जो आत्माएं यहां सहन कराने के जबरियन निमित्त बनती है, उनको वहां जन्म जन्मांतर सहन करना पड़ेगा, उल्टा हो जाता है। खुशी खुशी जो सेवा करते हैं वो एक भावना की बात है, हम ईश्वर की सेवा करते हैं, हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते। और
बाबा कौन ले जाएगा बाबा, नष्ट रूम बनना है या बाप की तरह पहचान
है?
अंतिम तक कौन ले जाएगा, बाप की पहचान सही पहचान या नष्ट रूम बनना?
बाप की सही पहचान,
अंतिम परीक्षा कौन सी होगी, बाप की सही पहचान या?
अरे पहचान तो अभी कर रहे हो, नष्ट हुआ तो अंत में जाके बनेंगे, ये फाइनल पेपर है, ये तो अभी का पेपर है बाप की पहचान। अभी इस पेपर में फेल भी हो रहे हैं बाप की पहचान में, और पास होकर के भी चल रहे।
बाप की पहचान के बगैर तो नष्ट हुआ बन ही नहीं सकते,
बाप की पहचान भी नंबरवार है, एक जैसी पहचान नहीं है। बाप को अगर पूरा पहचान लिया तो समझो पूरा ज्ञान आ गया। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पाठ बजाता हूं उसको कोई बिरले हैं जो समझते
हैं,
समझते हैं तो साथ में जब आते हैं, नहीं समझते हैं तो आज कांधे लावेंगे, कल छोटी मोटी कोई बात आ जाएगी लात मार के बात जावेंगे। तो ये अभी की परीक्षा है और रोज रोज की परीक्षा है पाप की पहचान। बाप तो अपनी पहचान अपने आप देते हैं, बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन लेने वाले नंबर वन।
बाबा जो बाप के जीवन कहानी में भाइयों के और बहनों के नाम है क्या वो असली होंगे? बाप के जीवन कहानी में नाम है भाइयों के और बहनों के वो असली होंगे आएंगे तो?
सेवा में
अष्टदेव में
वो तो जीवन कहानी तो और बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। जब वो बड़ी बड़ी होती चली जाएगी तो बड़ी बड़ी जीवन कहानी में तो ढेरों के ढेरों संसर्ग संपर्क में आने वाले होंगे, तो जिनके जिनके नाम होंगे वो सब अष्टदेव में आ जाएंगे। अरे अष्टदेव तो अभी नाम प्रकट हुए हैं, उनके लिए तो बोला है कि अब से 18 वर्ष पूर्व से अष्टदेवों का आना शुरू हुआ। वो तो लास्ट सो फास्ट जाने वाले, लास्ट में आते हैं और फास्ट जाते हैं। जब से ज्ञान में आते, जब से बाप को पहचानते, तब से जैसे पुरानी दुनिया उनके लिए खलास हो जाती है, पुरानी दुनिया पुराने देह और देह के संबंधियों के लिए कोई काम करते ही नहीं, उनका सारा तन सारा मन सारा धन कहां लगता है? ईश्वरीय सेवा में शुरुआत से ही लगता है। ये पहचान है उनकी, आज से ही नष्ट वो है। सत्युग शुरू नहीं हो जाता लेकिन उनका प्रैक्टिकल जीवन ये देखने में आएगा कि वो अपने तन की सेवा लौकिक संबंधियों के प्रति नहीं लगाएंगे, परवाह नहीं करेंगे, धन की सेवा लौकिक संबंधियों के प्रति नहीं लगावेंगे, कहां लगावेंगे? ईश्वरीय सेवा मिला शुरुआत से। तो पुरुषार्थ है, जितना अर्पण में बनेंगे उतना दर्पण पावरफुल बनेगा, उतनी ज्ञान की धारणा होगी। ज्ञान की धारणा होना माने दर्पण पावरफुल बनना।
आज सुबह बाबा तत्कातल दी थी कि 67 की वाणी में बोला है कि कल्प के 4980 वर्ष पूरे हो गए जी, तो 20 वर्ष के बाद में 87 में सत्युग शुरू हो जाएगा जी।
76 के लिए बोला, 76 के लिए बोला, वो भी कोई एक आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठती है, सबके लिए नहीं बोला। वो एक आत्मा सारी सृष्टि का बीज है, बीज की बुद्धि में बैठ गया तो जैसे सारे झाड़ की बुद्धि में बैठ ही जाएगा, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ।
तो बाबा एक्यूरेट सत्य की शुरुआत से मानने दी,
जब ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पूरी बात बैठ जाए
तो सभी के लिए सत्य शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल, एक के पीछे सब टिके हुए हैं, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते, एक के ऊपर सारा मदार है। बहुत प्यारा बच्चा है बाप का, सृष्टि का पहला पत्ता है, और
बाबा कोई संकल्प आए पहले तो यज्ञ में ये सेवा करे ये दे फिर उससे कम दे दे तो कितना घाटा हो जाता है
उससे कम करे तो घाटा हो जाता है क्यों कम करते ज्यादा करो हैं
लापरवाह कलयुग में जो आत्मा उतरती है डायरेक्ट परकाया प्रवेश करती है
लापरवाह कलयुग में ऊपर से आने वाली जो आत्माएं आती है वो परकाया प्रवेश करती है त्रेता में गर्भ से जन्म लेती है गर्भ में आती है और
बुद्धि से पहले ज्ञान लेती है तो पहली गंगा होती है पवित्र बुद्धि से जो पहले ज्ञान लेती है पहली गंगा होती है
ठीक है
पहली गंगा पहली गंगा कौन है
पहली गंगा वही है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि गंगा कहाँ से निकली अलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली और कानपुर की तो कोई बात ही नहीं है इलाहाबाद में तो फिर भी तीन नदियों का संगम होता है इसलिए इलाहाबाद में गंगा प्रसिद्ध है कानपुर में तो सारे कारखानों का कचरा जाके गिरना शुरू होता है वहां क्यों गंगा को डाल दिया क्योंकि गंगा आदि में पवित्र है तो अंत में कहां गिरेगी कचरे में गिरेगी या श्रेष्ठता में गिरेगी श्रेष्ठता में गिरेगी अंतिम जन्म में तम प्रधान जन्म में कचरे में गिरेगी गंगोत्री से उतरती है ऋषिकेश आती है हरिद्वार होके आती है फर्रुखाबाद होके आती है कन्नौज होके जाती है वहां तक कारखानों का कोई कचरा नहीं गिरता कहां से गिरना शुरू होता है बड़े बड़े कल कारखानों का गंध जो है वो कानपुर से गिरना शुरू होता है वो स्थूल गंगा की बात है तो चैतन्य गंगा की भी क्या बात होगी यूपी का बड़े से बड़ा शहर कौन सा है जहां बहुत गंदी इकट्ठी होती है गटर लाइन में
कानपुर
में किसने कहा छत्तर की तो बात ही नहीं बाबा ने बोला है छत्तर है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और सतहत्तर है संपूर्णता वर्ष सतहत्तर के बाद जब संपूर्णता वर्ष पूरा हो तब जो ज्ञान सुने उसकी बात है
एडवांस पार्टी का फाउंडेशन यमुना नदी ने लगाया सन छत्तर में
तो उससे क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू शुरुआत में शुद्ध होता है या कचरे को लेके पैदा होता है कहां यमुना नदी चिकनी मिट्टी में बहने वाली और कहां गंगा नदी ऐसी नदी में बहती है ऐसी जमीन में बहती है जहां की रेतीली जमीन चिपकती नहीं ये मिट्टी मिट्टी का फर्क हो जाता है मिट्टी देह को कहा जाता है देह से ही पार्ट बजाया जाता है गंगा जो पार्ट बजाती है वो रेतीली मिट्टी का पार्ट बजाने वाली है लगाओ झुकाओ नहीं और यमुना चिकनी मिट्टी का पानी होता है गंदला पानी हो जाता है वो चिकनी मिट्टी कोई शरीर पर अगर मलेगा तो चिपक जाएगा, जल्दी नहीं छूटेगा कितना भी पानी डालते रहो। ये अंतर है, ये देह अभिमान की मिट्टी भी दो प्रकार की हो गई, एक जल्दी छूट जाने वाली और एक छूटती नहीं। तो यमुना, ये यमुना तो भाई काली नदी, काली नदी का मतलब ये है भूखे वाले धर्म में जाने वाली काली, महाकाली। काली में काला पाठ बजाने वाली और
वार्ता में था कि 2018 में एक ऐसा युगल निकलेगा जिसकी कंचन काया बनेगी और उसकी 20 साल तक कंचन काया ही बनती रहेगी, तो 18 में पढ़ाई खत्म हो जाएगी।
एक ऐसा युगल निकलेगा, ये कौन से बुल्ले हो बोला? नहीं, एक वार्ता में पॉइंट, अरे पूरा परिवार का परिवार की एक इकाई होगी या नई दुनिया एक युगल से बनेगी, पूरा का पूरा सूर्यवंशियों का परिवार होगा, एक की बात नहीं है। और जो संपूर्ण बनेंगे उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जिनका देहभान खत्म हो गया उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जो देवभान से मर चुके हैं उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, या सबकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी? जब तक जीना है तब तक पीना है। तो 2018 तक देवभान से सब मर जाएंगे, ऐसे हो सकता है क्या? नंबर वार ऐसी स्टेज बनेगी, जो जो देह अभिमान से मरते जावेंगे उनके लिए पढ़ाई पूरी, फिर पढ़ाने का काम रह गया उनका, अपनी सेवा खत पाना था सो पा लिया।
और बाबा, अगर युगल साथ में है और नए संगठन के लिए पुरुषार्थ करना है तो कैसे करेंगे?
युगल साथ में है और नए संगठन का पुरुषार्थ करना है, फिर तो और सहज हो गया। कैसे करेंगे? जैसे लक्ष्मी नारायण करते हैं, जैसे मुरली में बताया वैसे ही करना है। कैसे करना है? कैसे का मतलब क्या है तुम्हारा, वो तो क्लियर करो।
मतलब नए संगठन मैंने सुना है कि गुप्त है।
नए संगठन गुप्त है,
ऐसा सुना है।
अरे मकान बनाया जाता है तो चारों तरफ कपड़ा लगाए देते कि नहीं? आजकल जो मकान बनाए जा रहे हैं, जो संगठन रूपी मकान बनेंगे तो वो गुप्त में बन रहे हैं या दिखाई दिखाई के बनते हैं? भक्ति मार्ग में भी बोला है, योग जुगुत जप मंत्र प्रभाव फल तबे जब करिय दुराव, नहीं तो खराब नजरें लग जाती हैं, गिरजाघर बनाए देंगे संक्षेप कर की तरह। हे भगवान के बने बनाए घर तू उजड़ जा, और वो उजड़ जाता है।
लौकिक में अपन जाना नहीं चाहते, मतलब ये है कि भगवान के कार्य में ही भगवान के उधर ही रहे।
जितनी ताकत लगावेंगे उतना तेजी से काम होगा, ताकत कम लगावेंगे शक्ति को इधर उधर बिखेर देंगे तो उतनी तेजी से नहीं होगा।
तो लौकिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
लौकिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नष्ट हुआ हो जाना चाहिए।
बाबा, जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शंकर ने अपने कटाव में ले लिया उसको,
ठीक है।
फिर उसके तीन धारा प्रवाहित हुई, एक स्वर्ग की तरफ, एक धरती की तरफ, एक पाताल लोक की तरफ।
ठीक है।
तो इसका भेद का क्या अर्थ हो? तीन धारा एक गंगा के कहां से हुए?
सृष्टि नयन में गंगा, ज्ञान गंगा नीचे थी या ऊपर ही कहेंगे? है? ऊपर ही कहेंगे। 69 से लेकर के 76 तक ज्ञान गंगा आई तो नीचे, लेकिन वो शंकर की जटाओं में अर्थात बुद्धि में ही घूमती रही या पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आई? बुद्धि में ही रगड़ती रही। 76 से वो ज्ञान गंगा तीन भागों में बढ़ती है। एक हिस्सा स्वर्ग लोक में जाता है, परिस्थिति में रहने वाले किन्हें कहेंगे? पवित्र आत्माओं को कहेंगे या पवित्र आत्माओं को कहेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसी है जो लक्ष्मी जैसी परम पवित्र ही पाठ बजाने वाली है? रुद्रमाला में तो है नहीं, तो कहां है? बेसिक में 10% ऐसी आत्माएं हैं बेसिक में जो असल चंद्रमा को पार करने वाली है, जो पलट करके चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाएगी। तो वो सुख का अनुभव करने वाली आत्माएं हैं, ये दुख का अनुभव करने वाली है आत्माएं जन्म जन्मांतर की, वो इधर का स्वर्ग में चली गई। वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो स्वर्ग बनाने वाला है, माना लक्ष्मी जब एडवांस ज्ञान धारण करती है तो स्वर्ग बनता है, क्योंकि तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। गंगा ने तो धारण किया 77 में ही 79 में, लेकिन धारण करने का फायदा क्या हुआ? रुद्रमाला का मणका ही रहेगी या विजयमाला में अड हो गई? रुद्रमाला का ही नहीं, वो पृथ्वीवासी उनके पल्ले पड़ गई। एक है पाताल लोक में चली गई, वो कोई और नहीं है पाताल लोक, जो धर्म विविचारी बन जाते हैं। उन विविचारी विदेशी धर्मों का फाउंडेशन डालने वाली वो ही यमुना नदी है। वो गंगा की समकक्ष है।
और भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जिसको बिल्ली की जेर मिल जाती है ना, तो फिर वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो बाबा क्या है?
ये गियर क्या होता है? ये मोटर में फोर व्हीलर में गियर लगाया जाता है, वो गियर है क्या है? गियर माने क्या?
गियर नहीं बाबा, जेर। जेर कहते हैं कि जब बिल्ली बच्चे रहते हैं ना, तभी
बिल्ली के बाद में गंदगी निकलती है।
अच्छा, बिल्ली के बच्चे के आसपास जो गंद लिपटी हुई होती है, हाँ, तो मिल जाती है तो क्या?
वो भाग्यशाली होता है।
दुनिया जो है वो गंद को ही आजकल भाग्यशाली मानती है। इस्लाम धर्म की आत्माएं हो या क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, ये माया बिल्ली के ज्यादा संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं। और माया बिल्ली के जो वारसदार बनते हैं, उनकी जब तक दक्षता रूपी जन्म होता है, तो उन्हें वो जेर मिल जाती है। कौन सी जेर? जिसे व्यभिचार की जेर कहा जाता है, गंदगी। वो समझते हैं हम बस बहुत भाग्यशाली हो गए, उसी में भाग्य मानते हैं अपना। यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ, कुमार का दादी ने यह धंधा शुरू कर दिया, दृष्टि लो और दृष्टि दो, यही जेर है। बहुतों ने इसको स्वीकार कर लिया। थोड़े से जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना कि दृष्टि के लेन देन करने से कोई पवित्र आत्मा बन जाएगी या राजयोग सिद्ध हो जाएगा, तो और ही विचार फैलाने वाली बात हो गई। बाप ने तो किसी मुरली में नहीं बोला कि ऐसा ऐसे धंधा करो तो उसे योग कहा जाता है। बाप जिन इंद्रियों को कंट्रोल करता है उन इंद्रियों के द्वारा, उनके संग के रंग के द्वारा स्वर्ग स्थापन हो सकता है, बाकी मनुष्य आत्माओं की इंद्रियों के द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। पतित आंखें पतित ही बनावेगी या पावन बनावेगी? पतित ही बनावेगी। पतित इंद्रिया का संग होगा तो पतित ही बनेगी, कोई भी इंद्रिया हो। लेकिन जो विधर्मी है तो वो तो वहां पहुंचते ही इसलिए, चलो ब्रह्मा कुमारियों का मेला लगा हुआ है, चलो देखे हैं क्या हो रहा है।
बाबा वो हमारी जो छोटी माँ है वो तो परम पवित्र आत्मा है ना?
हाँ।
सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा।
सबसे ज्यादा कैसे?
मतलब बाबा के बाद तो वही आत्मा है ना पवित्र?
नहीं,
छोटी माँ।
छोटी माँ कैसे पवित्र है? छोटी माँ से भी ज्यादा पवित्र तो उसको, तो उसको पढ़ाई पढ़ाने वाली है अनुसुईया, जिनके लिए बोला है, इन दीदी दादियों को भी पढ़ाई किसने पढ़ाई? आज में परदादे परदादियां थी, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली थी।
वो जन्म धर्मांतर की पवित्र आत्मा है ना बाबा छोटी माँ?
हाँ वो तो है,
लेकिन वो भरी महफिल में बैठ के ये सब कुछ दृष्टि देती है, जो जो भी धर्मी जाते जो।
तो पतित है या पावन है? अरे अरे दृष्टि से अगर पावन है तो फैसला ले पाती है, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो पतित है वो बंधन में रहेगा, या जो पावन है वो बंधन में रहेगा? जो झूठी सीता थी तो रावण के बंधन में आ गई, सच्ची सीता के लिए तो कहा तुम पावक में करो निवास, योग आदमी में निवास करो। असली योग आग्नि तो सीखी ही नहीं, बाप की पहचान होगी तब योग आग्नि जगेगी, कि पहचान ही नहीं हुई तो योग आग्नि हो जाएगी। अभी उस आत्मा को बाप की पहचान है, है? नहीं। तो योग आग्नि में निवास कब से करेगी? रावण संप्रदाय का विनाश हुआ क्या? हो रहा है। अरे विनाश हो रहा है कि रावण संप्रदाय और ज्यादा बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। विनाश क्या हो रहा है? तुम पावक में करो निवास, तुम जब निवास करोगे पावक में ज्ञान योग आग्नि में, असली ज्ञान तुमको जब मिल जाएगा तब की बात है।
सीता तो रावण से थे ना, लेकिन सुखी बैठ के आराम से दृष्टि देती है।
अज्ञानी आदमी अज्ञानी काम करेगा कि ज्ञान का काम करेगा? मुरली में तो बता दिया, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, बाप बैठ दस्ती देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, बाबा ने जो मना किया। और श्रीमद के बरखिलाफ जो चले उसे अज्ञानी कहेंगे ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी। पार्वती की अम्मा का नाम क्या था जिसने उसे पाला था? मैं ना मानूंगी। उसको पालने वाली घड़ी घड़ी संस्या पैदा करने वाली थी। और छोटी अम्मा को पालने वाली कौन थी? कोई थी कि नहीं? दादी दादी प्रकाशमणि दादी थी। तो बाबा की सही बात को माना उन्होंने? नहीं माना। और ही अड़ गई। और
बाबा शास्त्र में दिखाते हैं देवों का राजा इंद्र चंद्रमा का सहारा लेकर के गौतम पत्नी अहल्या उसको अपवित्र किया। तो चंद्रमा का सहारा लेना और गौतम ऋषि का रूप धारण करना,
हाँ, गौतम ऋषि जो नाम है उस सप्त ऋषियों में एक ऋषि का नाम है, गौ इंद्रियों को कहा जाता है। अत्तम माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, गुड बेटर बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा, यानी इंद्रियों का सुख भोगने वालों में जो सबसे ऊंची स्टेज में गया वो कौन हो सकता है? जो इंद्रियों का सुख भोगने वालों में सबसे ऊंची स्टेज में जाता है, हाँ, इस्लाम धर्म सबसे जास्ती सुख भोगता है इंद्रियों का। इस्लाम धर्म की जो बीज रूपात्मा है, बाप है, बापों का बाप, वो गौतम ऋषि हुआ। इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगने वाला, उसकी पत्नी हुई बीज रूप में, वो ही यमुना।
संगम रूप, संगम युग में,
अभी पूरी बात तो सुन लो। बीज रूप में है यमुना और आधार रूप में है प्रकाशमणि दादी। जैसे आधार रूप में सात नारायण होंगे, सतयुग का फर्स्ट नारायण नारायणी मम्मा बाबा, उनका वारसदार कौन बनेगा? क्यों क्यों कोई प्रूफ?
सेकंड धर्म की आधार मूर्त है, सेकंड धर्म की इस्लाम धर्म की आधार मूर्त है
ना, प्रूफ क्या है? मम्मा बाबा जब जीवित थे तभी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, जैसे ही मम्मा बंबई में गई इलाज कराने, सारा परिवार को उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया, बाबा कुछ नहीं कर सके। विदेशों में अखबार छपा दिए गए, जगदम्बा का टाइटल ले लिया। अब जगदम्बा एक होगी या दो दो हो जाएगी? एक ही होना चाहिए। तो वो माया बेटी ऐसे ही नहीं बन जाती है। आधार मूर्ति में गौतम ऋषि कौन हुआ फिर? सेकेंड नारायण विश्व विश्व ब्राह्मण परिवार का जो कराची से आया हुआ था, कराची में रह रहा था, ब्रह्मा बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा के रहते रहते भी सारा कारोबार बाबा ने किसके ऊपर सौंपा हुआ था, किस किशोर के ऊपर सौंपा हुआ था। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस कुत्तों को पालने के बड़े प्रेमी होते हैं, उन्होंने विश्व किशोर को स्पेशल पालना दी। यज्ञ के आदि में इसी बात का झगड़ा हुआ था, तो गौतम ऋषि भी है, गौतम ऋषि की पत्नी भी है। विश्व किशोर तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा हुआ, प्रकाशमणि दादी बच्ची हुई, फिर जगदम्बा की बात कहां से पैदा हो गई? ये जगदम्बा का टाइटल क्या साबित करता है? अरे इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या संबंध जोड़ा जो जगदम्बा का टाइटल लेके बैठ गई? अरे हाँ बस यही पाप हो गया।